एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर।
बंजर जमी से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। बंजर जमी से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमान और ये जमीन गाते हैं तेरी महिमा।
परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी मेरी सदा करती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता। हमारे मनों को और हमारे हृदयों को खोल दे ताकि हम तेरे वचनों को समझ सके और तेरे राह में चलने सके। पिता परमेश्वर, मेरे श्रोताओं के लिए मैं विशेषकर प्रार्थना करता हूँ, उन्हें समझ शक्ति दे ताकि वे तेरे वचन को सुनकर आशीषित होने सके और आत्मिक लाभ प्राप्त करने सके, तेरे राह में चलने सके। पिता परमेश्वर, मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ द्वारा बतला सकूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है सृष्टिकर्ता परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़े जो उत्पत्ति की पुस्तक 1:1 में मिलता है। यहाँ लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्यारो, यह बाइबल का पहला किताब का पहला वचन है, पहला पद है, और इसमें बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि परमेश्वर ने ही आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्यारो, आप सबों को मैं आज का संवाद सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। आइए हम आगे परमेश्वर के वचन में जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की दिव्य एकता सृष्टि में प्रतिबिंबित होती है। अतीत, वर्तमान और भविष्य में परमेश्वर के कार्य हमें यह समझने में सहायता करते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। यह बहुत विशेष बात है, सृष्टिकर्ता और सृजन में एकता। लोग अपनी जड़ों और पृष्ठभूमि में रुचि रखते हैं, वे अपनी उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि इसका उनके वर्तमान अनुभव और भविष्य की नियति पर प्रभाव पड़ता है। उन्हें अपनी वंशावली और विरासत पर गर्व है जो उन्हें अपनी दुनिया से जुड़ने और जुड़ने में मदद करता है। फिर भी चाहे उनकी वंशावली, विरासत, लिंग, जाति, शिक्षा या जीवन में स्थिति कुछ भी हो, उनका गौरवशाली मूल परमेश्वर में ही पाया जाता है। यीशु की वंशावली का वर्णन करते हुए प्रेरित लुका ने अपने किताब में इस अद्भुत श्लोक के साथ सूची का समापन किया है। वह कहता है, एनोस का पुत्र, सेत का पुत्र, आदम का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। यह हम पाते हैं लुका 3 का 38 पद में। वह मनुष्य का वंशावली का जिक्र कर रहा था, विशेषकर यीशु मसीह का वंश का जिक्र कर रहा था, जो कि यूसुफ और मरियम से जन्मा था। लेकिन वह दाऊद के वंश से आया और अब्राहम के वंश से आया और आदम का वंश और परमेश्वर का पुत्र है। लोग परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं और सृष्टि और छुटकारे के द्वारा उसके होते हैं। यह सच्चे मानवीय मूल्य, अर्थ और नियति का पक्का आधार है और परमेश्वर और एक दूसरे के साथ एकता और संगति का पक्का आधार भी है। प्यारो, यद्यपि हम मनुष्य अलग अलग हैं, एक विविध संसार में रहते हैं, फिर भी हम सभी अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर में एकता पाते हैं। परमेश्वर एक है, यह हम बाइबल की पुस्तकों में पाते हैं, जैसे कि उत्पत्ति 1:1-2, व्यवस्था विवरण 6:4, यहूना 1:1-3 में बतलाते हैं। ये बतलाते हैं कि परमेश्वर एक है। इज़राइल का परमेश्वर गवाही देता है, मैं ही प्रथम हूँ और मैं ही अंतिम हूँ, मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। यशायाह 44:6 कहता है, अपने आसपास के राष्ट्रों के विपरीत इज़राइल के विश्वास की स्वीकृति, जिसे सेमा कहा जाता है, गवाही देती है कि एक ही ईश्वर तो है। हे इज़राइल, सुनो, प्रभु हमारा परमेश्वर प्रभु एक है, कहता है व्यवस्था विवरण 6:4 पद। यीशु भी ईश्वरीय एकता पर जोर देते हैं। वह सेमा मरकुस 12:29 को उद्धृत करके सबसे बड़ी आज्ञाओं पर अपनी टिप्पणी शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि पौलुस के इस कथन के बीच तनाव है कि कोई ईश्वर नहीं है, केवल एक ही है, जो वह लिखते हैं 1 कुरिन्थियों 8:4 पद में, और यह कि एक आत्मा, एक प्रभु और सबका एक ईश्वर और पिता है, जो सब पर और सबके मध्य में और सब में है। इफिसियों 4:4-6 पद में वह यह लिखता है। एक ईश्वर और मनुष्यों के बीच एक मध्यस्थ अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, 1 तिमोथियस 2:5 में वह लिखा है। उसके संदर्भ पर भी विचार हम करें, हालांकि यीशु को मध्यस्थ के रूप में संदर्भित करना उसकी दिव्यता का खंडन नहीं करता है, ठीक उसी तरह जैसे कि उसका खुद को परमेश्वर का अद्वितीय पुत्र कहना इसका खंडन नहीं करता है। यहूदियों ने उसे मारने की कोशिश की क्योंकि वे इसे परमेश्वर के साथ समानता का दावा समझते थे, जो हम पढ़ते हैं यहूना 5:18 पद में। प्रेरित पौलुस ने भी मसीह को परमेश्वर के बराबर और इसलिए ईश्वरीय माना है, फिलिप्पियों 2:6 में हम यह पाते हैं। बाइबल परमेश्वर को उसकी सृष्टि से अलग करती है, फिर भी उसने इसे त्यागा नहीं है, क्योंकि वह इसे बनाए रखता है और निर्देशित करता है। बाइबल सृष्टिकर्ता को पिता, पुत्र और आत्मा के माध्यम से सृष्टि में सक्रिय रूप से प्रस्तुत करती है, यहूना 5:17 और यहूना 14:16-17 में पढ़कर हम यह समझ सकते हैं। समान फिर भी भिन्न, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा समान होते हुए भी भिन्न कैसे हो सकते हैं, इसके विषय में हम 1 पत्रस 1:2, यहूना 20:28, प्रेरितों के काम 5:3-4 और यहूना 1:1-18 में पढ़कर समझ सकते हैं। बाइबल पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को समान रूप से दिव्य तथापि अलग अलग व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत करती है। मसीह पिता के व्यक्तित्व की स्पष्ट छवि है, लिखा है इब्रानियों 1:3 में, लेकिन वह पिता का व्यक्तित्व नहीं है। पवित्र आत्मा पुत्र और पिता को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन वह स्वयं एक दिव्य व्यक्ति है। एक ईश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 सहशाश्वत व्यक्तियों की एकता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपाधियां उनकी समानता को सूचित करती हैं। इसे हम उत्पत्ति 1:1, यहूना 1:1-3, दूसरा कुरिन्थियों 3:16-18 और 11:31 में पढ़कर समझ सकते हैं। मुख्य रूप से एक दिव्य व्यक्ति के लिए उपयोग की जाने वाली उपाधियां अक्सर अन्य दिव्य व्यक्तियों के लिए भी जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। यहूना के सुसमाचार के अनुसार आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया, यहूना 1:1-3 में पढ़ते हैं। यह उत्पत्ति की पुस्तक के शब्दों को प्रतिध्वनित करता है। आदि में परमेश्वर, जिसे हम एलोहिम इब्रानी में कहते हैं, उसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, उत्पत्ति 1:1। इससे पता चलता है कि एलोहिम शीर्षक, जिसका उपयोग पुराने नियम में परमेश्वर के लिए किया जाता है, मसीह पर भी लागू होता है, जिसके द्वारा सभी चीजों का निर्माण किया गया था। पौलुस ने परमेश्वर और पिता की उपाधियों का परस्पर उपयोग किया है, यह हम पाते हैं 2 कुरिन्थियों 11:31 में। मसीह और आत्मा को प्रभु भी कहा गया है, यह हम पढ़ पाते हैं 2 कुरिन्थियों 3:14-18 में। पवित्र शास्त्र परमेश्वर के 3 व्यक्तियों की रचनात्मक गतिविधि का वर्णन करता है। इसे हम पिता के विषय उत्पत्ति 2:7 में पढ़ सकते हैं, पुत्र के विषय यहूना 1:3 में और आत्मा के विषय उत्पत्ति 1:2 में, कि तीनों ने सृष्टि में काम किए, सृष्टि में तीनों शामिल थे, एकजुट फिर भी अलग। उत्पत्ति 1:26-27, 3:22, मलाकी 2:10 और यहूना 14:10 में हम पढ़ करके इसे समझ सकते हैं। पिता और पुत्र के बीच के संबंध के बारे में यहूना 14:10 में जो कहा गया है, उसका महत्व समझाता है। पवित्र शास्त्र प्रत्येक ईश्वरीय व्यक्ति को पारस्परिक निवास के संबंध में एक अद्वितीय भूमिका के रूप में वर्णित करता है। जबकि पिता पुत्र नहीं है, फिर भी पिता पुत्र में है और पुत्र पिता में है, यहूना 14:10। इस प्रकार यीशु कहते हैं, यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को देखा है, यहूना 14:9। 3 दिव्य व्यक्तियों की अलग अलग भूमिकाओं का वर्णन भी इसी तरह के शब्दों में किया जा सकता है। सृष्टि सृष्टिकर्ता की एकता और विविधता को प्रतिबिंबित करती है। इसे हम पा सकते हैं उत्पत्ति 1:26-27, 3:22 और मलाकी 2:10 पद में। प्यारो, पापी मनुष्य सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच महत्वपूर्ण अंतर को अनदेखा कर देते हैं। यह सृष्टि के बजाय सृष्टि की पूजा की ओर ले जाता है, रोमियो 1:20-25। जबकि पाप परमेश्वर की सृष्टि को विकृत करता है, यह सृष्टि में परमेश्वर के प्रगटीकरण को पूरी तरह से नष्ट नहीं करता है। प्रकाशित वाक्य 1:8 कहता है कि परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, प्रभु यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत। प्रकाशित वाक्य 1:8 में हमें परमेश्वर के विषय में बताया गया है कि वह भूतकाल, वर्तमान और भविष्य से जुड़े हुए हैं। वास्तविकता की वर्तमान और भविष्य की प्रकृति आंशिक रूप से उसके पिछले इतिहास से निर्धारित होती है। परमेश्वर समय और अनंत काल का स्वामी है। अतीत ईश्वरीय रूप से पोषित गर्भ है, जिससे हमारा वर्तमान जन्म लेता है। प्यारो, वर्तमान मसीह का उपहार है, जिसमें सभी चीजें समाहित हैं, कहता है कुलुसियों 1:17 पद। भविष्य आत्मा के द्वारा एक वादा है, रोमियो 8:23-24। अतीत, वर्तमान और भविष्य में समय की एकता, परमेश्वर की एकता और सभी चीजों को चरमोत्कर्ष पर लाने की उसकी उत्सुकता को दर्शाती है। प्यारो, पूरी सृष्टि भविष्य की बहाली और दूसरे आगमन पर सभी छुड़ाए गए लोगों के प्रकट होने के लिए करा रही है, कहता है रोमियो 8:19-23। हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, भीतर से कराहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान के रूप में अपने गोद लिए जाने और अपने शरीरों के छुटकारे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रोमियो 8:21-24। पवित्र शास्त्र में सृष्टिकर्ता, पालनहार, उद्धारक और इतिहास में हस्तक्षेप करने वाले के रूप में परमेश्वर के महान कार्यों का वर्णन है। पवित्र इतिहास के सभी पन्नों में जहां परमेश्वर के अपने चुने हुए लोगों के साथ व्यवहार दर्ज है, परमेश्वर की महिमा मसीह के माध्यम से प्रकट हुई। केवल उद्धारकर्ता के आगमन पर ही नहीं, बल्कि पतन और छुटकारे के वादे के बाद के सभी युगों में परमेश्वर मसीह में था। इतिहास के मध्य में परमेश्वर ने मसीह के अवतार में एक विशेष तरीके से कार्य किया था। 2 कुरिन्थियों 5:19। जो मूल सृष्टि में पिता और आत्मा के साथ सक्रिय था, यूहन्ना 1:1-3। इसी यीशु प्रेरितों के काम 1:11 ने इतिहास में एक नई सृष्टि का उद्घाटन करने के लिए अपने पिता, मत्ती 16:27 और आत्मा की महिमा में इतिहास में लौटने का वादा किया था। 2 पत्रस 3:13 में हम यह पाते हैं। पवित्र शास्त्र और अतीत, वर्तमान और भविष्य के विषय में चलिए हम पढ़ेंगे 2 पत्रस 3:5-7 में। प्रकृतिवाद को इस शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि वैज्ञानिक नियम और अवलोकन अलौकिक के बिना सभी वास्तविकता को समझाने के लिए पर्याप्त हैं। प्रकृतिवाद सृष्टि के भूत, वर्तमान और भविष्य में परमेश्वर के कार्यों की एकता की व्याख्या क्यों नहीं कर सकता? आइए हम पढ़ करके समझते हैं 2 पत्रस 3:4-7 से। पवित्र शास्त्र सिखाता है कि परमेश्वर अपनी सृष्टि को हर पल बनाए रखता है और सृष्टि के लिए उसका एक लक्ष्य है जिसमें इसकी मूल्य पूर्णता की बहाली शामिल है। हाँ, पाप के कारण सृष्टि निरर्थकता के अधीन है, लेकिन परमेश्वर निर्णायक रूप से कार्य करेगा। जब पाप समाप्त हो जाएगा तो पतित सृष्टि समाप्त हो जाएगी। जब पाप और पापी नहीं रहेंगे तब परमेश्वर की सृष्टि बहाल हो जाएगी। यदि हम मूल सृष्टि और उसके वर्तमान पोषण के चमत्कारों को अस्वीकार करते हैं तो हम इसके भविष्य के पुनर्निर्माण के चमत्कार को भी अस्वीकार कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के कार्यों की गारंटी देता है। प्रेरित पत्रस लिखता है कि जैसे संसार परमेश्वर के वचन द्वारा बनाया गया था, वैसे ही इसका भविष्य भी उसी वचन द्वारा निर्धारित किया जाता है। 2 पत्रस 3:5-7। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वयं के साथ आमने सामने संवाद के लिए बनाया। यह संवाद पाप के कारण बाधित हुआ था, लेकिन अंत में इसे बहाल कर दिया जाएगा। हम पढ़ते हैं इसे प्रकाशित वाक्य 21:3 में। सृष्टि को समझने के लिए पवित्र शास्त्र आवश्यक है। प्यारो, बाइबल हमें क्यों दी गई है? यह हमें 2 तिमोथियस 3:16 और 8:20 में समझाया गया है। यह हमें सच्चाई को जानने के लिए दिया गया है और हमारी शिक्षा के लिए दिया गया है कि हम सच्ची ज्योति को जानें और सही मार्ग में चलें। आज के पाठ आपको परमेश्वर और उसके वचन पर अपना पूरा भरोसा करने के लिए प्रेरणा करता है। शैतान लगातार परमेश्वर के स्थान पर मनुष्य की ज्ञान की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है। यह मिथ्या विज्ञान है। परमेश्वर के वचन में इसे बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं है। परमेश्वर अपने नियमों को रद्द नहीं करता, बल्कि वह उन्हें अपने उपकरणों के रूप में उपयोग करते हुए लगातार उनके माध्यम से कार्य करता रहता है। प्रकृति अपने कार्य में एक ऐसी प्राणी की बुद्धिमान उपस्थिति और सक्रिय एजेंसी की गवाही देती है जो अपनी इच्छा के अनुसार अपने सभी कार्यों में आगे बढ़ता है। मानव शरीर की कार्य प्रणाली को पूरी तरह से समझना मुश्किल है। यह ऐसे रहस्य प्रस्तुत करता है जो सबसे बुद्धिमान को भी चकित कर देते हैं। यह किसी तंत्र के परिणाम स्वरूप नहीं है जो एक बार गति में आने के बाद अपना काम जारी रखता है। इसे नाड़ी धड़कती है और सांस चलती है। ईश्वर में हम जीते हैं, चलते हैं और अपना अस्तित्व रखते हैं। हर सांस, दिल की हर धड़कन हमेशा मौजूद परमेश्वर की शक्ति का निरंतर प्रमाण है। प्यारो, त्रिएक परमेश्वर जो था और है और आने वाला है, उसने पवित्र आत्मा के द्वारा, पुत्र के द्वारा सभी चीजों को बनाया, बनाए रखा और पूर्ण करेगा। परमेश्वर अतीत, वर्तमान और भविष्य को अपने हाथों में रखता है। सृष्टि की वास्तविकता परमेश्वर की त्रिएक प्रकृति के रहस्योद्घाटन से प्रकाशित होती है। परमेश्वर के निश्चित वचन बाइबल के कारण हमें इन बातों का आश्वासन मिलता है। प्यारो, यह बहुत विशेष बात है कि हम उस सच्चे परमेश्वर को जानें जिससे हमारा शुरुआत हुआ है। हम अगर उसे सही जानेंगे तो हम जीवन पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को सही जानना ही अनंत जीवन है। और हमें उसको जानने के लिए उसका वचन पवित्र शास्त्र बाइबल दिया गया है। यदि हम उसके बातों को मानेंगे तो हम सच्चाई के रास्ता में चलेंगे। परमेश्वर हमें मदद करे, उसका आत्मा हमें मदद करे कि हम सच्चाई को जाने और उसके रास्ता में उसके पीछे चलें। परमेश्वर का आशीष आप सबको मिले। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे महान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पास हम आते हैं पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। तू हमारा सृष्टि करता है, तू हमारा देख रेख करने वाला है, तू हमारा सर्वोच्च भलाई चाहता है, उन्नति चाहता है। पिता परमेश्वर, हमें तेरे कहे हुए बाइबल के निर्देश वचन के पीछे चलने के लिए पवित्र आत्मा का साथ दे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कीजिए, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े, तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।